नमस्कार आदाब श्रोताओं, मोबाइल वाणी के बेहद लोकप्रिय और खास कार्यक्रम खबरें जरा हटके में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करते हैं वैसे मुद्दों के बारे में जिससे आपकी जिंदगी का सीधा सरोकार है, वैसी खबरें जो जिंदगी की आपाधापी में हमसे छूट जाती हैं या खबरों की सुर्खियां नहीं बन पाती। तो आइए सुनते हैं खबरें जरा हटके।
दोस्तों, मैं दीपक और मैं आज आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। शिशुओं का बेहतर पोषण भारत को ज्यादा स्नातक देने में मदद करेगा। नए शोध के मुताबिक 0 से 3 साल के उम्र के बच्चों के लिए पूरक पोषण सुनिश्चित करके भारत अपने स्नातकों की संख्या 3.17 मिलियन तक बढ़ा सकता है। जनरल ऑफ न्यूट्रिशन के एक नए अध्याय के मुताबिक जो बच्चे माँ के गर्भ से लेकर 3 साल की उम्र तक सरकारी संचालित कार्यक्रमों के माध्यम से अतिरिक्त पोषण प्राप्त करते थे, वे 3 से 6 साल तक के बीच अतिरिक्त पोषण प्राप्त करने वालों की तुलना में स्नातक की डिग्री हासिल करने की संभावना ज्यादा रखते थे। जब 13 से 18 आयु वर्ग के आंगनबाड़ी बच्चों का अध्ययन किया गया था तो पाया गया कि शुरुआत में ही वे 14 मिमी लंबे थे। नया अध्ययन निर्णायक सबूत प्रदान करता है कि नवजात शिशुओं और शिशुओं को पर्याप्त पोषण का लाभ उनमें अपनी शिक्षा और रोजगार की संभावना को बढ़ाता है। जर्नल ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स 2017 के मुताबिक शादी में 1 साल की देरी ने घर पर जन्म देने वाली महिला को 2.2% तक स्तनपान कराने की दर में 5.5% की बढ़ोतरी और बच्चों को पूरी तरह से टीकाकरण की संभावना कम कर दी है। साथ ही 2013-14 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत भर में जरूरतमंद बच्चों और महिलाओं के आधे से भी कम आंगनबाड़ी की पूरक पोषण सेवा का उपयोग करते हैं। भारत के निर्णायक और महालेखा परीक्षक यानी कैग की 2013 की एक रिपोर्ट में उनमें गरीब बुनियादी ढांचे और सेवाओं की ओर इशारा किया गया था, जिन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों और ICDS योजना को विफलता के रूप में वर्णित किया था। 2017 में बिहार में ICDS समीक्षा में कैग ने कहा कि लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाली गुणवत्ता सेवाओं को गंभीरता से समझौता किया गया था, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय, पेयजल, रसोई घर, बर्तन आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं गायब थी। 72% के पास तो बिहार में अपनी इमारत नहीं थी। अब तक सरकारी संदेश ने यह सुनिश्चित करने में मदद की है कि युवा बच्चों या गर्भवती महिलाओं में 10 में से 9 माँ 2013-14 में आंगनबाड़ी की पूरक पोषण सेवा के बारे में जानती हैं। हालांकि केवल 40 से 50% माँ और गर्भवती महिलाओं ने वास्तव में सेवा का लाभ उठाया है। भारतीय नीतियां स्वास्थ्य, पोषण और युवा बच्चों को पोषण के उद्देश्य से कई कार्यक्रमों के माध्यम से 1000 दिनों की अवधि को बहुत अच्छी तरह से प्रतिबिंब करती हैं। लेकिन शायद विकास के इस महत्वपूर्ण समय के जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने का समय है, तभी शिशुओं को बेहतर पोषण भारत को ज्यादा स्नातक देने में मदद करेगा।
धन्यवाद दीपक। और मैं मधु खबर लेकर आई हूँ। इंटरनेट और सोशल मीडिया का दुरुपयोग समाज को नैतिक पतन की ओर ले जा रहा है। इस संबंध में पूरी दुनिया में सूचना और संचार क्रांति की अंधी दौड़ मची है। इसमें बहुत बड़ी भूमिका इंटरनेट निभा रहा है। आज जिनके पास भी इंटरनेट है उनका एक अहम समय इस पर ही व्यतीत होता है, खासकर सोशल मीडिया पर। आज सोशल मीडिया ने हमें अपनी बात कहने का एक मंच अवश्य दिया है, पर इसी साधन का लोगों द्वारा दुरुपयोग भी किया जा रहा है। अगर हम देश की बात करें तो इंटरनेट के दुरुपयोग और इस समस्या से निपटने में अब तक कोई असरदार रणनीति निर्मित नहीं हुई है। भारत के साइबर कानून बेहद कमजोर हैं। हम कुछ भी कहकर लिखकर आसानी से निकल जाते हैं। हालांकि साइबर कानून को मजबूत करने के लिए 2008 के संशोधित कानून में कुछ संशोधन किए गए, मगर यह भी न काफी थे। सोशल मीडिया में सोशल जैसी कोई बात नहीं। 2014 के लोकसभा चुनाव पर हम नजर डालें तो इंटरनेट का जमकर गलत उपयोग हुआ। आज बड़ी आसानी से सीरिया के कोई फोटो भेजकर उसे भारत में हुई ट्रेन दुर्घटना से जोड़ दिया जाता है। कभी और कहीं भी फोटो भेजकर कहा जाता है इस बच्ची के दिल में छेद है और इसके प्रत्येक शेयर पर इसके ऑपरेशन के लिए कुछ खास रकम मिलेंगे बता दिया जाता है। किसी हैकर द्वारा कोई लिंक आसानी से सोशल मीडिया में चला दिया जाता है और कहा जाता है इस लिंक पर जाने पर आपके मोबाइल नेटवर्क पर 100 से 200 रुपए का रिचार्ज हो जाएगा। इन सब से बचने के लिए हमारी सरकार से अपील है कि वह साइबर कानून को कड़ा बनाए और सेंसरशिप जैसी व्यवस्था बने जिससे भड़काऊ और गलत खबरों पर रोक लग सके।
धन्यवाद मधु जी। तो दोस्तों, मैं किशन और आज मैं आपको बताऊंगा यौन दुर्व्यवहार से बचने वाले असक्षम महिलाओं और लड़कियों तक अब भी न्याय नहीं पहुंच पाई है। इनविजिबल विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस एक्सेस टू जस्टिस फॉर वुमेन एंड गर्ल्स विद डिसेबिलिटी इन इंडिया नाम की रिपोर्ट को एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा जारी किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बलात्कार और अन्य प्रकार की यौन हिंसा से बचने वाली महिलाएं एवं लड़कियां अक्सर पुलिस स्टेशनों और अस्पतालों में अपमान का सामना करती है। रिपोर्ट में 8 राज्य शामिल हैं, इनमें से 17 बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के मामले की जांच की गई है। इस अध्ययन में परिवार, वकील, मानसिक स्वास्थ्य संसाधनों के अधिकारों और आश्रय सुविधाओं, पुलिस, सरकारी अधिकारी, अक्षमता, अधिकार कार्यकर्ता और विशेष शिक्षक को शामिल किया गया है। 2011 की गणना के अनुसार भारत की आबादी का लगभग 2.2% या 26.8 मिलियन लोग विकलांगता के साथ रहते हैं। भारतीय कानून और नीति को ऐसे मामले में जहां अपराधी का पता लगाया जाता है या पहचान नहीं किया जा सकता है, उन मामलों सहित मुआवजे की सुविधा के लिए राज्य सरकार की आवश्यक होती है। फिर भी 17 मामले में से 5 में मुआवजा दिया गया था। यहां तक कि चरम हिंसा, आघात और आर्थिक कठिनाइयों के मामले में भी अक्षम महिलाओं और लड़कियों को मुआवजे पाने से परेशानी हुई है। भारत ने 2007 में विकलांग व्यक्ति RCPD के अधिकारों पर सम्मेलन की पुष्टि की है, जो विकलांग व्यक्तियों के लिए न्याय तथा पहुंच सुनिश्चित करता है। इसमें अक्षम लोगों के लिए उपयुक्त विशेष सुविधाएं और विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 के अधिकारों द्वारा अनिवार्य अन्य प्रावधान शामिल हैं, जो विकलांग लोगों, दुर्व्यवहार और शोषण से विकलांग लोगों की रक्षा करता है।
तो दोस्तों, ये थी पिछले दिनों की कुछ खास खबरें। अगर आपके आसपास या आपके क्षेत्रों में भी कुछ ऐसी ही खबरें हैं जो जरा हटके हैं, तो हमें जरूर बताएं अपने मोबाइल में नंबर 3 दबाकर, और साथ ही इस कार्यक्रम को पसंद करने के लिए अभी दबाएं नंबर 5। तो सुनना न भूलें हर बुधवार और शनिवार शाम 4 बजे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम खबरें जरा हटके।